हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंध अध्याय 15 श्लोक नंबर 46 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो न पर वंशी विजु विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांभर दरुण बिंब फल दरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्व अहम् न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 15 जिसका शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन श्लोक नंबर 46। अब तक हमने देखा कि कुमारगण भगवान के गोलोक धाम के सातवें दरवाजे के बाहर खड़े द्वारपालों के द्वारा रोक दिए गए, जिनके कारण कुमारगण को बहुत रोष आया और भगवान साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए और भगवान के सुंदर मनोहारणीय स्वरूप को देखकर चकित रह गए, उनकी सुंदरता का बखान करने लगे, उनकी सुंदरता का रसपान करने लगे। उनके नेत्र भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर ब्रह्म उपासना को भूल गए और भगवान के स्वरूप को जी भर के देखना चाहते हैं। और उसके उपरांत आज कुमारगण कुछ बोलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो वहां से हम प्रारंभ करेंगे। कुमाराः उचुः योऽन्तर्हितो हृदि कतोऽपि दुरात्मना त्वम् सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तरात् यद्येर्वकर्णविवरेण गुहागतो न पित्रानुवर्णितहरः भवदुद्भवेन कुमाराः उचुः योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वम् सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराध यर्ह्येव कर्णविवरेण गुहां गतो न पुत्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन शब्दार्थ कुमारः उचुः अर्थात कुमारो ने कहा योऽन्तर्हितो हृदि यो मना जो अंतरहितो मना अव्यक्त है हृदि यानी हृदय में गतोपि दुरात्मना त्वम गतोपि अर्थात आसीन है अपि मना यद्यपि दुरात्मना धूर्तों को त्वम यानी तुम सो ध्यायवनो नयन मूलम अनंत राध सो मना सब वो अध्य आज एव निश्चय ही न हमारा नयन मूल हमारे सामने अनंत राधा अनंत मना हे अनंत राधा अर्थात प्राप्त किया और यर ह्येव कर्ण विवरणेन गुहां गतो न यर यर ही अर्थात जब एव निश्चय ही कर्ण विवरण कानों से होकर गुहां यानी बुद्धि गत प्राप्त किया न यानी हमको पित्रानुवर्णित रहा पित्रानु पित्र अर्थात पिता के द्वारा अनुवर्णित वर्णित किए गए रहा यानी रहस्य भवत उद्भवेन आपके द्वारा प्राकट्य है अनुवाद कुमारों ने कहा हे प्रिय प्रभु आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते क्योंकि भगवान ने कहा कि नाहम प्रकाशः सर्वस्य तो कुमार गण कह रहे हैं कि हर किसी के सामने तो आप प्रकट नहीं होते यो अंतरहितो गतोपि दुरात्मनात्वम् तो उनके सामने तो आप प्रकट नहीं होते हो लेकिन यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं किंतु जहां तक हमारा संबंध है हम आपको अपने समक्ष देख रहे हैं यद्यपि आप अनंत हैं हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुने हैं पित्रानु वर्णित रहा यर येव कर्ण विवरेण गुहम जो जो आपके रहस्य अपने पिता के द्वारा हमने अपने कानों से कथन जो सुने हैं वे अब आपकी कृपा पूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो गए हैं श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर उन तथाकथित योगियों का वर्णन हुआ है जो अपने मन को निर्विशेष या शून्य पर केंद्रित करते हैं या उसका ध्यान करते हैं कुछ लोग बोलते भगवान का कोई साकार स्वरूप होता ही नहीं है वो तो निर्विशेष है यहाँ साक्षात भगवान खड़े हैं और कुमार गण कहते हैं हमारे पिताजी ने हमें बताया कि आप इतने सुंदर हैं और आज आपको देखकर हमें यकीन आ गया लेकिन कुछ लोग जो निर्विशेष का इतना ध्यान करते हैं और कहते हैं भगवान का कोई वास्तविक स्वरूप है ही नहीं तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है श्रीमद भगवद गीता का यह श्लोक उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जिनसे आशा की जाती है कि वे ध्यान में संलग्न अति कुशल योगी होंगे किंतु जो भगवान को अपने हृदय के भीतर आसीन नहीं पाते ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर दुरात्मा कहा गया है कैसे बताया गया है यहाँ पर साफ साफ बताया यो अंतरहितो हृदि गतोपि दुरात्मना तो वो हृदय के अंदर बैठा हुआ है वो श्याम सुंदर है कितना सलोना है कितना सुंदर है लेकिन दुरात्मना लोग के सामने प्रकट नहीं होता क्योंकि भगवान ने कहा कि नाहम प्रकाश और सर्वस्य योग माया समावृतम, वो अपनी योग माया के द्वारा अपने आप को आच्छादित करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको दुरात्मा कहा गया है, जिसका अर्थ है अत्यंत कुटिल हृदय वाला या कम बुद्धिमान व्यक्ति। जो महात्मा का विलोम है, विलोम मतलब महात्मा का अपोजिट है, जिसका अर्थ है विशाल हृदय वाला। महात्मा मतलब जो बहुत बड़ा हृदय रखता है, जो बहुत प्योर और शुद्ध बुद्धि को रखता है, वही भगवान को देख सकता है। ऐसे तथाकथित योगी जो ध्यान में लगे रहते हैं, वे भी विशाल हृदय नहीं है, वे चतुर्भुजी नारायण रूप को भी नहीं देख सकते, भले ही भगवान उनके हृदय में वास कर रहे होते हैं। यद्यपि परब्रह्म की प्रथम अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म है, किंतु परमेश्वर के निर्विशेष तेज का अनुभव करने से मनुष्य को तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं बेशक ब्रह्म यानी निराकार निर्विशेष ज्योति भी भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन वहां तक आपको सेटिस्फाई नहीं होना है, आगे बढ़ने का प्रयास करो। ईशोपनिषद में भी भक्त प्रार्थना करता है कि उसकी आंखों से ब्रह्म का चमकीला तेज हटा लिया जाए, जिससे वह भगवान के असली साकार रूप का दर्शन कर सके और इस तरह पूर्णतया संतुष्ट हो सके। ईशोपनिषद में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसमें भक्त भगवान के दर्शन करने की प्रार्थना करता है, तो उससे सबसे पहले भगवान के ब्रह्म ज्योति के दर्शन होते हैं। तजदिन इतना तेज प्रकाश होता है जिसको देखकर वो भक्त व्याकुल हो जाता है, बोलता नहीं, मुझे इस तेज को नहीं देखना है, मुझे भगवान के साक्षात स्वरूप को देखना है। हे परम नियंता, हे परब्रह्म, हे सर्वशक्तिमान, हे अनंत स्वरूप, हे जगदीश्वर, हे भगवान, आप कृपया इस तेज को हटा दो ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। उसी तरह यद्यपि भगवान प्रारंभ में अपने चमकीले शारीरिक तेज के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु यदि भक्त निष्ठापूर्वक उनका दर्शन करना चाहता है तो भगवान उसके समक्ष प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान हमारी अपूर्ण आंखों से नहीं देखे जा सकते, ना ही वे हमारे अपूर्ण कानों से सुने जा सकते हैं, और ना ही अपूर्ण इंद्रियों से अनुभव किए जा सकते हैं, किंतु यदि कोई श्रद्धा तथा लगन से भक्ति करता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियः, ये तो भगवान तो दिव्य है ना, तो हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, तो फिर हम भगवान को कैसे देखें। सेवान मुखे ही जिह्वादो स्वयम एव सुपूर्त्यदा, यदि हम अपनी जिह्वा से भगवान की सेवा करेंगे, अर्थात महामंत्र का उच्चारण करते जाएंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसके साथ साथ भगवान को समर्पित किया हुआ प्रसाद जिह्वा के द्वारा सेवन करेंगे, तो हमारी सिंसियरिटी जितनी आगे बढ़ती जाएगी, हमारी भक्ति में जितनी लगन होगी, स्वयं एव सुफूर्त्यदा भगवान प्रकट होंगे। यदि भगवान आपके समक्ष आना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमारे अंदर या हमारी इंद्रियों के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को देख सके। यहाँ पर चार मुनियों सनत कुमार, सनातन, सनंदन तथा सनक को निष्ठावान भक्तों के रूप में वर्णित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से भगवान के साकार रूप के विषय में सुन रखा था, किंतु उन्हें केवल निर्विशेष रूप ब्रह्म ही बतलाया गया था, किंतु वे भगवान की निष्ठापूर्वक खोज कर रहे थे, अतएव उन्होंने अंततः उनके साकार रूप का दर्शन किया, जो उनके पिता द्वारा बताए गए वर्णन के अनुरूप ही था। इस तरह वे पूर्णतया तुष्ट हो गए। यहाँ वे अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि यद्यपि प्रारंभ में वे मूर्ख निर्विशेषवादी थे, किंतु अब भगवत कृपा से उन्हें उनके साकार रूप को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ये मुनि अपने पिता ब्रह्मा से सुनने का अपना अनुभव बता रहे हैं, जिनका जन्म सीधे भगवान से ही हुआ था। दूसरे शब्दों में भगवान से लेकर ब्रह्मा और ब्रह्मा से नारद तथा नारद से व्यास इत्यादि की परंपरा को यहाँ स्वीकार किया गया है। चूंकि कुमारगण ब्रह्मा के पुत्र थे अतः उन्हें ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान सीखने का अवसर प्राप्त हुआ था, इसीलिए निर्विशेषवादी शुभारंभ के बावजूद अंत में भी भगवान के साकार रूप के साक्षात्कार दर्शन कर सके। शिला प्रभुपाद की जय। तो शिला प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर रूप से बताया है कि भले ही वो शुरू में निर्विशेष को ही समझ रहे थे, लेकिन फिर भी वो भगवान की खोज कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर भगवान दिखते कैसे हैं। भगवान के धाम तक पहुंच गए, उनके अंदर सत्य था, तेज था, उनका जीवन पवित्र था, इसलिए भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। यदि हम भी पूरी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, सत्य के साथ अपने अनुष्ठानों, अपने नियमों का पालन करेंगे और पवित्र नाम का जप करेंगे, तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि हमें भी भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। लेकिन जहां तक श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया कि हमें निर्विशेष यानी ब्रह्म स्वरूप में ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हृदय के अंदर सदैव एक इच्छा होनी चाहिए कि भगवान हमें आपके साक्षात दर्शन करने हैं। आगे मुनिगण कहते हैं, तम त्वं विदाम भगवन् परमात्मा तत्त्वम् सत्त्वेन संप्रतिरतिं रचयन्तमीशाम् यत् तीनु ताप विदितै दृढ़ भक्ति योग उद्ग्रंथयो रिदि विदुर मुनयो विराखा तम तम विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वम् सत्वेन संप्रतिरतिं रचयन्तमीशाम् यत् तीनु ताप विदित दृढ़ भक्ति योग उद्ग्रंथयो रिदि विदुर मुनयो विरागा त्वं त्वं विदाम तमन उसको त्वं यानी तुमको विदाम यानी हम जानते हैं भगवान परमात्मा तत्त्वम भगवान हे भगवान परम यानी परम आत्म तत्त्वम यानी परब्रह्म सत्वेन आपके सत्वगुणी रूप के द्वारा संप्रति अब रतिम अर्थात ईश प्रेम रचयंतमेशाम अर्थात उत्पन्न हुए एशम यानी उन सबों का यत्तेनु ताप विदितै दृढ़ भक्ति योग यत्मन जो ते यानी तुम्हारी अनुताप कृपा विदितय समझ गया है दृढ़ भक्ति योग दृढ़ मन अविचलित भक्ति यानी भक्ति योग के द्वारा उद्ग्रंथ यानी अनुरक्ति से रहित उद्ग्रंथ यो रिदि विदुर विदुर मुनयो विराग यानी भौतिक बंधन से मुक्ति उद्ग्रंथ मन भौतिक बंधन से विरक्ति या अनुरक्ति से रहे रिदि विदु हृदय में विदुमना समझ गए मुनयो यानी मुनिगण विरागा अर्थात भौतिक जीवन में रुचि ना रखने वाले। अनुवाद सतोष कुमार भगवान से कहते हैं हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर हैं जो अपने दिव्य रूप को अकुलुषित यानी विशुद्ध सत्वगुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है जिनके हृदय भक्तिमय विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं परम सत्य को तीन रूपों में निर्विशेष ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझा जा सकता है। जैसे हम शुरू में भागवतम में पढ़ चुके हैं 2.1.11 में वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञातम् अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते तो भगवान के ये तीन स्वरूप हैं जिनमें उनको समझा जा सकता है। यहाँ इसे स्वीकार किया गया है कि परम सत्य को समझने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंतिम शब्द है। यदि भी चारों कुमारों को उनके महान विद्वान पिता ब्रह्मा ने शिक्षा दी थी, तथापि वे पर ब्रह्म को यथार्थ रूप में समझ नहीं पाए थे। अब यहाँ पर वो फिर भी वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए, वे परम ब्रह्म को तभी समझ पाए जब उन्होंने अपनी आंखों से भगवान को साक्षात देखा। दूसरे शब्दों में यदि कोई भगवान को देखता या समझ लेता है तो परब्रह्म के अन्य दो रूप निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा रूप भी स्वतः समझ में आ जाते हैं। इसीलिए कुमारगण पुरुष पुष्टि करते हैं, आप परम सत्य हैं। निर्विशेषवादी यह तर्क कर सकता है कि चूंकि भगवान इतने सुंदर ढंग से सुसज्जित थे अतः वे परब्रह्म नहीं थे, किंतु यहाँ पर इस बात की पुष्टि की गई है कि परम पद की समस्त विविधता अर्थात विचित्रता शुद्ध सत्व से निर्मित है। भौतिक जगत में कोई भी गुण सत्तो रजो तथा तमो से कुलुषित रहता है, यहाँ तक कि भौतिक जगत में सत्तो गुण भी रजो तथा तमो गुण से स्पर्श से मुक्त नहीं है, लेकिन दिव्य जगत में एकमात्र सत्वगुण विद्यमान रहता है जिसमें रजो तथा तमो का लेश मात्र भी नहीं रहता है। इसलिए भगवान का स्वरूप तथा उनकी विविध लीलाएं एवं साज सामग्री सारे के सारे शुद्ध सत्वगुण हैं। सत्वगुण में ऐसी विविधता भगवान द्वारा भक्त की तुष्टि हेतु सतत प्रकट की जाती है। भक्त परम सत्य को शून्यता या निर्विशेष में नहीं देखना चाहता। एक अर्थ में परम दिव्य विविधता केवल भक्तों के निमित्त होती है, अन्यों के लिए नहीं, क्योंकि दिव्य विविधता का यह स्पष्ट रूप एकमात्र भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है। मानसिक चिंतन या आरोही विधि से नहीं। कहा जाता है कि जब मनुष्य को भगवान की किंचित मात्र भी कृपा प्राप्त होती है तो वह भगवान को समझ सकता है, अन्यथा उनकी कृपा के बिना मनुष्य हजारों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी यह नहीं समझ सकेगा कि वस्तुतः परब्रह्म क्या है। यह कृपा भक्त द्वारा तब अनुभव की जाती है जब वह कलमश से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जब सारा कलमश उन्मूलित हो जाता है और भक्त भौतिक आकर्षणों से पूर्णतया विरक्त हो जाता है तभी वह भगवान की इस कृपा को प्राप्त कर सकता है। बहुत ही सुंदर शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आज आप जो कृष्ण को समझने का प्रयास कर रहे हो, कृष्ण की भक्ति कृष्ण का प्रेम प्राप्त होना कोई इतना सरल नहीं है। जब तक किसी को भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है तब तक तो वो ब्रह्म में निर्विशेष में ही अटका रहता है, लेकिन जब भगवान की कृपा दृष्टि होती है ना तभी उसी को कृष्ण समझ में आता है। वरना कृष्ण ये कृष्ण भगवान है ये बात समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमें श्रील प्रभुपाद जी जैसे मार्गदर्शन के रूप में परम पूर्ण सतगुरु का आश्रय प्राप्त हुआ है। ऐसे आध्यात्मिक गुरु को मिलना बहुत बहुत कठिन है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के इन तात्पर्यों के द्वारा भगवान को इतना स्पष्ट बता दिया है कि हम उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर वक्त कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी अनुकंपा है। इसलिए यहाँ पर परंपरा के विषय में बताया गया, जैसे ब्रह्मा जी के पुत्रों ने अपने पिता से सुना था ना, ये चतुर्ष कुमार ने अपने पिता से सुना था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब कोई परंपरा से आए हुए जो गुरु होते हैं उन्हें उनके द्वारा जब हम श्रवण करते हैं ना तभी हमें भगवान के ये विभिन्न स्वरूप क्लियर हो सकते हैं कि वही भगवान जो साक्षात स्वरूप में हमारे सामने कृष्ण के रूप में है, वही कृष्ण परमात्मा के स्वरूप में प्रत्येक जीव के हृदय में है, और वही भगवान श्री कृष्ण ही प्रत्येक कण के अंदर निर्विशेष स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। तो ये तभी समझ में आता है जब किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा प्राप्त होती है, और हम अनुग्रहित हैं श्रील प्रभुपाद जी के, क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद जी के ये तात्पर्य ना होते तो ना हम ब्रह्म को समझ पाते, ना परमात्मा को, ना देवताओं को, ना भगवान को, और यूं ही भटकते रहते कभी कहां तो कभी कहां। आज हमको एक रास्ता, एक दिशा, एक मार्ग, एक लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसका कारण सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये पूरा क्रेडिट श्री प्रभुपाद जी को जाता है। आप चाहे किसी के द्वारा भी सुनते हो, आप चाहे किसी के भी शिष्य हो, किसी से भी शिक्षा ग्रहण करते हो, हम सब कौन है? हम सब करछियां हैं। करछी होती है ना, जैसे सब्जी रेडी है और उसके अंदर करछी है, उसको डाल के देना है बस। हम केवल डाल के दे रहे हैं। आप चाहे किसी भी हरे कृष्ण का महामंत्र या ये गीता और भागवत आप किसी से भी सुन रहे हो, वो वास्तव में आपके शिक्षा गुरु हैं। वो आपको शिक्षा दे रहे हैं कि जो श्रील प्रभुपाद जी ने बना के दिया है ना, ये जो सब्जी तैयार करके दिए हैं, वो हम सब करछियां हैं, आपको डाल के दे रहे हैं, आपको खाना है बस। वास्तव में ये पूरा का पूरा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो ये शास्त्र का ज्ञान है, आज अगर श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य ना होते ना, एक श्लोक भगवत गीता का ना हमको पढ़ना आता, ना समझ में आता, ना ही भागवतम को तो हम पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते कि इसके श्लोकों को कभी हम समझेंगे। ये श्री प्रभुपाद जी की बड़ी अनुकंपा है, और हमको सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए श्री प्रभुपाद जी का। उठते बैठते हुए उनको धन्यवाद करना चाहिए कि श्री प्रभुपाद जी आपकी कितनी अनुकंपा है। यदि प्रभुपाद न होते तभी की हुई तो के माने धोरी तंदे। ये शिला प्रभुपाद जी की अगर अनुकंपा न होती तो आज हमें कुछ पता नहीं होता कि कौन भगवान है, उससे कैसे प्रेम करें, उसकी कैसे भक्ति करें। मुनिगण अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवत भक्ति की महानता के विषय में बताते हुए वे कहते हैं, नात्यंतिकम विगणयन्त्यपिते प्रसादम् किं वन् यद पितभयं ब्रुव उन्नयस्ते येङ्ग त्वदङ्ग्रिशरणा भवत कथाया कीर्तन्यतीर्थयशसा कुशला रसाख्या। नात्यंतिकं विगणयन्त्यपिते प्रसादं किं वन् यदर्पितभयं ब्रुव उन्नयस्ते येङ्ग वदङ्ग्रिशरणा भवत कथाया कीर्तन्यतीर्थयशसा कुशलारसख्या। नांत्यतिकम नमन नहीं आत्यंतिकम अर्थात मुक्ति, विगुणयन्ति अर्थात परवाह करते हैं, अपी भी वे मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। ते प्रसादे, ते मना वे प्रसादे, प्रसादम अर्थात वर। किम वन्य दर्प, किम मना किम का मतलब होता है क्या कहा जाए, अन्यत अर्थात अन्य भौतिक सुख, अर्पित यानी दिया गया, भयम अर्थात भय, ब्रुव अर्थात ब्रुवों का, उन्नये अर्थात उठाने से, ते यानी तुम्हारे, मतलब भौतिक सुख की वो क्या परवाह करेंगे जबकि वो मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। कौन? येंग त्वदंग्रि शरण भवत कथाया। ये मतलब वे भक्त, अंग हे भगवान, त्वत यानी तुम्हारे, अंग्री शरणम, अंग्री कहते हैं चरण कमलों को, शरणम मना शरण लिए हुए, जिन्होंने आपके चरण कमलों की शरण ली है। और कैसे ली है? भवत आपकी कथायाम यानी कथाएं कीर्तन्य तीर्थ यशस कीर्तन्य अर्थात कीर्तन के योग्य तीर्थ यानी शुद्ध यशस यश कुशला अत्यंत पटु रसज्ञ रस के ज्ञाता वो बहुत ही पटु होते हैं कुशल होते हैं रसज्ञ होते हैं आपके दर्शन का आपके कीर्तन का आपके प्रेम का आस्वादन कर चुके हैं फिर तो उनको आध्यात्मिक जगत मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं रहती है मुक्ति की भी परवाह नहीं करते फिर उन्हें भौतिक जगत की किसी भी वस्तु के अंदर कैसे आकर्षण प्राप्त हो सकता है। अनुवाद देखिए वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथारूप में समझने में अत्यंत पटु हैं जो सर्वाधिक बुद्धिमान हैं अपने को भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं जो कीर्तन तथा श्रवण के योग्य होते हैं होती हैं ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वर की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते स्वर्ग लोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वरों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत भक्तों द्वारा जिस दिव्य आनंद का भोग किया जाता है वे अल्पज्ञों द्वारा भोगे गए भौतिक सुख से सर्वथा भिन्न है। भौतिक जगत में अल्पज्ञ लोग वरों के चार सिद्धांतों में लगे हैं जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष कहलाते हैं। ये जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये जो पुरुषार्थ है ना ये सिर्फ कर्म कांडियों के भौतिक लोग जिनको कुछ आध्यात्मिक आनंद का पता नहीं है ना उनके लिए है। सामान्यतः वे किसी भौतिक वर को प्राप्त करने के लिए धार्मिक जीवन अपनाते हैं मतलब धर्म करते हैं जिसका उद्देश्य इंद्रियों को तुष्ट करना यानी अर्थ प्राप्त करना। जब वे इस विधि से अधिकतम इंद्रिय भोग की पूर्ति करने में हताश अथवा भ्रांत हो जाते हैं यानी काम समाप्त नहीं होता तो वे परम तत्व के तदाकार होना चाहते अर्थात मोक्ष जो उनके विचार में मुक्ति है। मुक्ति पांच प्रकार की है जिनमें सबसे कम महत्वपूर्ण सायुज्य या ब्रह्म से तदाकार होना है। भक्तगण ऐसी मुक्ति की परवाह नहीं करते क्योंकि वे वास्तव में बुद्धिमान होते हैं ना ही वे अन्य चार प्रकार की मुक्तियों में से किसी भी की कामना करते हैं। ये है भगवान के ही लोक में निवास करना अर्थात सालोक्य संगी के रूप में भगवान के साथ रहना अर्थात सामीप्य उनके जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना अर्थात सारष्टि तथा वैसा ही शारीरिक रूप प्राप्त करना अर्थात सारूप्य वे तो एकमात्र भगवान की तथा उनके शुभ कार्यों की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति तो श्रवण कीर्तनम ही है। भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में दिव्य आनंद लेने वाले शुद्ध भक्त किसी प्रकार की मुक्ति की परवाह नहीं करते। यदि उन्हें पांचों मुक्तियां भी प्रदान की जाए तो वे उन्हें अस्वीकार कर देते हैं जैसा कि भागवत के तृतीय सिकंद में बतलाया गया है। भौतिकतावादी लोग स्वर्ग लोक में स्वर्गिक सुख के इंद्रिय भोग की आकांक्षा करते हैं किंतु भक्तगण ऐसे भौतिक आनंद का तुरंत तिरस्कार कर देते हैं। भक्त इंद्र के पद तक की परवाह नहीं करते। भक्त जानता है कि कोई भी आनंद प्रद भौतिक पद कभी न कभी विनष्ट हो जाएगा। यदि वह इंद्र चंद्र या किसी अन्य देवता के पद तक पहुंच भी जाता है तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब वह विनष्ट हो जाएगा। भक्त कभी भी ऐसे क्षणिक आनंद में रुचि नहीं दिखाता। वैदिक शास्त्रों से यह समझा जाता है कि कभी न कभी ब्रह्मा तथा इंद्र तक नीचे गिरते हैं किंतु देव्य भगवत धाम से कभी भक्त नीचे नहीं गिरता। जीवन की इस दिव्य अवस्था की जिसमें मनुष्य भगवान की लीलाओं को सुनने में दिव्य आनंद का अनुभव करता है श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी संस्तुति की है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से बातें कर रहे थे तो आध्यात्मिक साक्षात्कार के विषय में रामानंद राय ने उत्तर तरह तरह के सुझाव रखे थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस एक सुझाव के अतिरिक्त सबों को निरस्त कर दिया था कि मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की महिमाओं का श्रवण करना चाहिए। वह सबों को स्वीकार्य है। विशेष रूप से इस युग में मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों से भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने में अपने को लगाए। मानव जाति के लिए यह सर्वोच्च वरदान माना जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। अत्यंत ही सुंदर एक ही शब्द है, श्रवण। जब तक जीव श्रवण नहीं करता है, शुद्ध भक्तों का संग नहीं करता है, तब तक वो आध्यात्मिकता में उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए मृत्यु पर्यंत हमको शुद्ध भक्तों से श्रवण करने की लालसा को बनाए रखना है। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें अवसर प्रदान कीजिए कि हम शुद्ध भक्तों से श्रवण करें, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल एकत्रित हुआ है जब हम श्रील प्रभुपाद जी से इसे परम शुद्ध, परम वैष्णव, भगवान की शक्ति आवेश अवतार, भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त के मुखारविंद से भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की असीम अनुकंपा है। आप सबसे निवेदन है कि हृदय के अंदर यही इच्छा सदैव बरकरार रखिएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा श्री प्रभुपाद जी के शब्दों को श्रवण करें, क्योंकि समस्त शास्त्रों में, समस्त वेदों में, यहाँ तक श्री प्रभुपाद ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी बात की संस्तुति की है कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की महिमाओं का श्रवण करना ही हमारा वास्तविक उद्देश्य है। वो इस कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति यही है। इसलिए मानव जाति के लिए यह सर्वोच्च वरदान माना गया है, और इसीलिए अब ये चतुर्ष कुमार भगवान से एक वरदान मांग रहे हैं, और इनके माध्यम से हम सबको भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें स्वीकार कर लीजिए और हम सदैव आपके गुणों को, आपकी लीलाओं को, आपकी कथाओं को श्रवण करते रहें, आपकी भक्ति में लगे रहें। चाहे हम किसी भी नारकीय जीवन में क्यों न चले जाएं, लेकिन आप बस एक वचन दीजिए कि आप सदैव हमें साथ दीजिएगा, आप सदैव हमारे साथ रहिएगा, आपकी कथाओं को श्रवण करने का अवसर हमें हर जीवन में मिले, आपकी महिमा का गुणगान करने का अवसर हमें हर शरीर में मिले, आपके पवित्र नाम का जप करने का अवसर हमें हर योनि में मिले, फिर हम उससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ी, सबसे बड़ा वरदान है। कुमारगण भगवान से कहते हैं, कामं भव सवृजिनैर् निरयीषु नास्तात् चेतोलिवद्यदि नुते पदयो रमेत वाचश्चनस्तुलसि वद्यदि तेङ्ग्रिशोभा पूर्येत गुण पूर्येत ते गुण गुण यदि कर्णरन्ध्रे कामं भव स्ववृजनैर् नरयेषु नस्तात् चेतोलिवद्यदि नुते पदयो रमेत वाचश्च नस्तुलसिवद्यदि तेङ्ग्रिशोभा पूर्येत ते गुण गुण यदि कर्णरन्ध्रे कामं भव। कामं मन वांछित, भव मन जन, स्वृजनय यानी अपने ही पाप कर्मों से, निरयेषु निम्न जन्मों में, न हमारा, मतलब हमने जो जो कर्म किए उनके अनुसार हमें किसी भी योनि में जन्म मिले, स्तात ऐसा ही हो, भले उसके लिए हम आपसे याचना नहीं कर, नहीं नहीं हमने अपराध किया फिर भी हमको शुद्ध भक्त का जन्म मिलना चाहिए, नहीं। चेतो चेतोलिवद्रिटि, चेतो मना मन, अलिवत यानी भौरे सदृश यदि यदि नो यानी हो सकता है ते तुम्हारे पद्यो अर्थात चरण कमलों पर रमेत लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी आप हमें किसी भी योनि में भले जन्म दो, लेकिन जिस तरह भंवरे जो है वो सदैव फूलों के ऊपर मंडराते रहते हैं, इसी तरह हमें ये वरदान दीजिए कि हमारा जो चित्त है वो सदैव आपके चरण कमल रूपी चरणों पर मंडराता रहे। वाचस् नस्तुलस तुलसी वद्यत तेंग्री शोभा। वाचस् अर्थात शब्द, च भी त न यानी हमारे, तुलसीवत तुलसी दल के समान, यदि यानी यदि ते यानी तुम्हारे अंग्री चरणों पर शोभा अर्थात सजा। तो हमारे जो शब्द हैं वो सदैव आपके चरण कमलों की शोभा का विस्तार करते रहें, उसका विवरण करते रहें। और पूर्येत यानी पूर्ति हो जाते, पूर्ति हो जाते हैं ते यानी तुम्हारे गुण गुणैर यदि करण रंध्रे। गुण गुणैर अर्थात दिव्य गुणों के द्वारा यदि यदि करण रंध्रे कान के छिद्र। और हमारे कान भले कोई भी हो लेकिन उन कानों में सदैव आपकी कथा आती रहे, गुणगान आपके सुनने को अवसर मिलते रहे। अनुवाद। मुनिगण भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द आपके कार्य के कथन से सुंदर बनते रहें, जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं, तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहें, तब तक आप जीवन की जिस किसी नारकीय स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, अब चारों मुनि भगवान से अपनी दीनता दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के दो अन्य भक्तों को शाप दे रखा और अपना अभिमान व्यक्त किया था। जय तथा विजय नामक दो द्वारपाल जिन्होंने उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका था निश्चित रूप से अपराधी थे, किंतु वैष्णव होने के नाते इन चारों मुनियों को क्रोध में आकर उन दोनों को शाप नहीं देना चाहिए था। इसलिए इस घटना के बाद उन्हें चेत हुआ कि भगवत भक्तों को शाप देकर उन्होंने बुरा कार्य किया है, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि नारकीय अवस्था में भी उनके मन भगवान नारायण के चरण कमलों की सेवा में सेवा करने से विचलित न हो। जो लोग भगवान के भक्त होते हैं वे जीवन की किसी भी दशा में भयभीत नहीं होते, बशर्त ये कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें। भगवान नारायण के भक्तों नारायण परा के बारे में कहा जाता है, न कुतश्च भिव्यति भाग 6:17.28 के, नारकीय स्थिति में प्रवेश करने से डरते नहीं हैं, क्योंकि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, अतः उनके लिए स्वर्ग या नरक एक ही समान है। भौतिक जीवन में स्वर्ग तथा नरक दोनों ही एक समान होते हैं, क्योंकि वे भौतिक हैं। इनमें से किसी में भी भगवान की सेवा में लगे रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, अतएव जो लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं वे स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं देखते। ऐसा तो केवल वे भौतिकवादी देखते हैं जो एक की उपेक्षा दूसरे को वरीयता देते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको कहीं भी भय नहीं लगता, वो किसी भी स्थिति में चाहे किसी भी नरक लोक में भी चले जाए वो भयभीत नहीं होते। एक बात बताऊं, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब होता है भरोसा, भक्ति का मतलब होता है श्रद्धा, भक्ति का मतलब होता है विश्वास। एक बार जब भगवान के ऊपर श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए कि वो मेरी रक्षा करेगा, भगवान के ऊपर भरोसा हो जाए कि वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगा, तो हृदय से भय समाप्त हो जाना चाहिए। जहां भय है वहां श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, और जहां श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, वहां भय नहीं। यही भक्ति की कसौटी है भक्तों। इसलिए हृदय में कोई भी भय मत रखना, कभी किसी भी योनि से, किसी भी जन्म से भयभीत मत होना। बस एक ही प्रार्थना भगवान के चरणों में सदैव यही होनी चाहिए कि बस तुम मेरे साथ रहना, तुम्हारा साथ हो, फिर किसी भी अवस्था में मैं तुम्हारे साथ के साथ आनंदित रह सकता हूं। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इन चारों भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि भक्तों को शाप देने के कारण हम नरक जा सकते हैं, किंतु हम भगवान की सेवा करना नहीं भूलें। भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा तीन प्रकार से की जाती है, मन से, वचन से तथा कर्म से। यहाँ मुनिगण कहते हैं कि उनकी वाणी सदैव परमेश्वर से के गुणगान में लगी रहे। कोई कितनी ही अलंकारमयी या नियंत्रित व्याकरण सम्मत भाषा क्यों न बोले, किंतु यदि उसके शब्द भगवान की सेवा में नहीं लगते तो उसमें तो ना तो कोई स्वाद होता है और ना ही वह किसी लाभ की होती है। यहाँ पर तुलसी दलों का दृष्टांत दिया गया है। तुलसी दल औषधीय या जीवाणु नाशक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी हैं। ये पवित्र माने जाते हैं और भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं। तुलसी दल में असंख्य सद्गुण हैं, किंतु यदि उन्हें भगवान के चरण कमलों पर अर्पित न किया जाता तो तुलसी का इतना महत्व नहीं होता। इसी तरह कोई व्यक्ति अलंकार या व्याकरण की दृष्टि से कितना ही सुंदर ढंग से क्यों न बोले और भौतिकतावादी श्रोता उसकी अत्यधिक प्रशंसा क्यों न करें, किंतु यदि उसके शब्द भगवान की सेवा में अर्पित नहीं होते तो वे व्यर्थ हैं। कान के छेद बहुत छोटे होते हैं और वे किसी ने गर्णीय ध्वनि से पूरित हो सकते हैं, अतः वे भगवान की महिमा जैसी महान ध्वनि को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि कान के छेद आकाश की तरह हैं। जिस तरह आकाश कभी भी पूरित नहीं होता, उसी तरह कान की विशेषता है कि कोई चाहे जितनी तरह की ध्वनियां उंडेलता जाए फिर भी कान अधिकाधिक ध्वनियों को ग्रहण कर सकता है। यदि भक्त को निरंतर भगवान की महिमा सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे तो वह नरक जाने से भी भयभीत नहीं होता। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का यही लाभ है। कोई किसी भी स्थिति में क्यों न हो, ईश्वर उसे हरे कृष्ण कीर्तन करने का अधिकार देता है। यदि जीवन की किसी भी स्थिति में मनुष्य कीर्तन करता रहे तो वह कभी भी दुखी नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद की। आगे मुनिगण भगवान से भगवान के इस अति अनुकंपा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आप कितने कृपालु हो, हम जैसे पतित के सामने आप प्रकट हुए हो, हमारे ऊपर आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी है। वे कहते हैं, पादुश्च कर्तयदिदं पुरुहोतरूपम् तेनेश वृत्तिमवा पुरलं दृशो न तस्मा इदं भगवते नम इत्वधीमा यो नात्मना दुरुदयो भगवान् प्रतीता पादुश्च कर्तयतितं पुरुहूतरूपम् तेनेशने वृत्तिमवा पुरलं दृशो न तस्मा इदं भगवते नम इद्विदेमा यो नात्मना दुरुदयो भगवान् प्रतीता। पादुश्च कर्थम अर्थात अपने आपने प्रकट किया, प्रादुर्भाव यानी प्रकट करना, यदिदम यदि यात्मन जो इदमन यह पुरुहूत हि अतीव पूजन रूपम यानी नित्य रूप तेनेश निर्वृतिम तेने तेन मना इस रूप से ईश हे प्रभु निर्वृतिम अर्थात संतोष अवापु यानी प्राप्त किया इस स्वरूप को देखकर जिसको आपने अपनी अनुकंपा से हमारे सामने प्रकट किया हमने निवृत्तम बहुत आनंदित हो गए हैं अलम अर्थात इतना अधिक दृश्य यानी दृष्टि न मतलब हमारे तस्मय उस इदम यह भगवते भगवान को नमः यानी नमस्कार करते हैं तस्मा इदम भगवते नमः इद्विदेम इद्विदेम मतलब अर्पित करते हैं और योनात्मना दुरुदयो भगवान प्रतीत यो मन जो अनात्मना अर्थात अल्पज्ञों द्वारा दुरुदया दुरुदया यानी देखे जाने देखे नहीं जा सकते हैं भगवान प्रतीत भगवान यानी साक्षात भगवान प्रतीत यानी हमारे द्वारा देखे गए हैं अनुवाद अतः हे प्रभु हम भगवान के रूप में आपके नित्य स्वरूप को सादर नमस्कार करते हैं जिसे आपने इतनी कृपा करके हमारे समक्ष प्रकट किया है आपका परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता किंतु हम इसे देखकर अपने मन को मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक संतुष्ट हैं श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चारों मुनि अपने आध्यात्मिक जीवन के आदि में निर्विशेषवादी थे किंतु बाद में अपने पिता एवं गुरु ब्रह्मा की कृपा से वे भगवान के नित्य आध्यात्मिक स्वरूप को समझ गए और अपने को पूर्ण तुष्ट अनुभव करने लगे दूसरे शब्दों में जो योगी जन निर्विशेष ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की आंशिक आकांक्षा करते हैं वे पूरी तरह तुष्ट नहीं हो पाते यहाँ पर बताया ना कि हम संतुष्ट कैसे हुए तेनेश निवृत्ति वापुरलम दृश्यो जब तक भगवान का साक्षात स्वरूप नहीं दिखता ना तब तक पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं होता इसीलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं या परमात्मावादी हैं वे अपने मन में तुष्ट हो भी जाएं तो भी आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी आंखें तुष्ट नहीं होती हैं किंतु जो ही ऐसे व्यक्ति भगवान की अनुभूति कर लेते हैं वे सभी प्रकार से तुष्ट हो जाते हैं दूसरे शब्दों में वे भक्त बन जाते हैं और भगवान के रूप को निरंतर देखते रहना चाहते हैं ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि है कि जिसने प्रेम रूपी अंजन को अपनी आंखों में लेप करके कृष्ण का दिव्य प्रेम विकसित कर लिया है वह भगवान के दिव्य रूप का निरंतर दर्शन कर सकता है इस संदर्भ में प्रयुक्त विशिष्ट शब्द अनात्मनात्मा उनको इंगित करता है जिनका अपने मन तथा इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है अतः जो चिंतन करते हैं और भगवान से तदाकार हो जाना चाहते हैं ऐसे लोग भगवान के नित्य रूप का दर्शन करने का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते निर्विशेषवादियों एवं तथाकथित योगियों के लिए भगवान सदैव योग माया के पर्दे में छिपे रहते हैं भगवत गीता कहती है कि जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के द्वारा दृश्य थे तब भी निर्विशेषवादी एवं तथाकथित योगी उनका दर्शन नहीं कर पाते थे क्योंकि वे भक्तिमय दृष्टि से विहीन थे निर्विशेषवादियों एवं तथाकथित योगियों का सिद्धांत है कि परमेश्वर तभी कोई विशेष रूप धारण करते हैं जब वे माया के संपर्क में आते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 9.11 में कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो। जब मैं मनुष्य देह प्राप्त करता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि ये देह भी क्या है, माया है। क्योंकि यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तथाकथित योगियों का सिद्धांत है कि परमेश्वर तभी विशेष रूप धारण करते हैं जब वे माया के संपर्क में आते हैं। यदि भी वास्तव में उनके कोई रूप नहीं होता है, वो सोचते हैं नहीं भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, बस भगवान जब माया के अंदर आ जाते हैं तभी वो स्वरूप धारण करते हैं, तो ये स्वरूप जो माया का, जो भगवान का होता है, वो भी माया से आच्छादित होता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। भगवान तो मायापति हैं। भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्तिते, जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया को पार कर जाता है। फिर माया भगवान को कैसे आच्छादित कर सकती है? नहीं हो सकता। लेकिन भगवान सूर्य के समान है, और जिस तरह से सूर्य तपिश के द्वारा बादल को बनाता है और बादल सूर्य के सामने आ जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो सूर्य को नहीं देख सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य छुप गया है, सामने माया आ गई है इसलिए सूर्य दिख नहीं रहा। सूर्य का प्रकाश कम नहीं हुआ है, बस वो बादल के कारण दिख नहीं रहा है। इसी तरह से वो माया के कारण भगवत दर्शन नहीं कर पाते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यद्यपि वास्तव में निर्विशेषवादियों एवं तथाकथित योगियों की यह धारणा उन्हें भगवान के यथारूप दर्शन करने से रोकती है, इसीलिए भगवान ऐसे अभक्तों की दृष्टि से सदैव ओझल रहते हैं। चारों मुनि भगवान के प्रति इतनी कृतज्ञता अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने उनको बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गौरव प्रेमानंदे।